ये जो 60-61 साल का अरसा था, क्या हुआ है? तो फ़लस्तीन की सरजमीन पर तो 4 से 5% से ज़्यादा इनकी तादाद नहीं थी। जिस फ़लस्तीन की तरफ ये पलट के वहाँ की हुकूमत को कब्ज़े में लेके, या ये लफ्ज़ सही नहीं है, हुकूमत को लेके, जहाँ पर पलटने के बाद ये पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल बनाना चाहते हैं, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों को। लोग अभी तक ये समझते हैं कि जैसे फ़लस्तीन एक मुल्क है और इसके पड़ोस में कहीं इसराइल है, फ़लस्तीन एक जगह है उसके पड़ोस में कहीं इसराइल है, ये नहीं है। इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर बनाया गया है, यूँ नहीं है कि ये दो अलग अलग जगह हैं। फ़लस्तीन के ऊपर
कुछ यहूदी आबाद थे वहाँ,
4% ये 4 से 5% है। जब थियोडोर हर्ज़ल ये बात कर रहा है, 4 से 5% है मुसलमान सरजमीन है। कैसे पता आपको भाई, क्या मतलब है? खिलाफत उस्मानिया के अंडर में ही जगह, और जब उसने ये तय कर लिया और सबको खूब हजम करवा दिया और पूरे मुल्क दुनिया के सफ़र किए उसने जाके, और सबको खूब समझाया कि हाँ भाई तुम मीडिया के लोग हो, तुम नहीं ये करना है, तुम जो है वो फ़र्ज़ करो लिखा रही हो, मुसन्निफ़ तुम, शायर, अब तुम लोगों ने ये काम करने, अच्छा भाई तुम जब काम शुरू होगा, हिजरत शुरू होगी, हाँ भाई कश्तियाँ इसकी तरफ से आएंगी, अच्छा पैसा तुम्हारी तरफ से आएगा, नहीं रोथशील्ड फैमिली, गोल्डस्मिथ फैमिली, ये बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं जो यूरोपियंस थी, इनके आप सर्च करें तो ये वो लोग हैं जो पूरे बरतानिया में कब्जा किए बैठे थे, रोथशील्ड फैमिली और गोल्डस्मिथ, वही गोल्डस्मिथ जिसकी बेटी जमाइमा और जमाइमा शादी इमरान खान की, ये गोल्डस्मिथ फैमिली का था, ये गोल्डस्मिथ रोथशील्ड फैमिली तो दो जो मारूफ हो गई हैं, इनके जैसे और पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों जो बहुत बड़े बड़े पूरी दुनिया को खरीद लेते हैं, इनका इतना पैसा था, इन सबको जाके राजी करना कि देखो एक बहुत बड़ा प्लान हो गया, हम सब के सब यूँ जा रहे हैं, मुकद्दस सरजमीन है, जाके पूरी दुनिया में कब्जा करेंगे, उनको तो ये नहीं कहोगा मुकद्दस, उनसे कहोगा भाई तेरा बिजनेस पूरी दुनिया में फैल जाएगा अगर इस तरह हम कब्जा कर लेते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा, रोडशील्ड को भी अच्छा लगेगा, चलो पूरी दुनिया में कब्जा हो जाएगा। अब ये प्लान करते करते इन सबको राज़ी किया और 1901 में, कितने 18 साल के बाद, 1901 में थियोडोर हर्ज़ल 2-3-4 बड़े लोगों को लेके बरतानिया से, फ्रांस से, मुसलमान दुनिया से, और जाके बैठ गए आपके खलीफा के पास अब्दुल हमीद दुवम, आखिरी खलीफा खिलाफत उस्मानिया का, और उससे जाके कहा कि देखें हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम यहूदी मज़हब में फैले हुए पूरी दुनिया के अंदर, एक जगह जो खाली पड़ी है फ़लस्तीन, हमको वहाँ पर जाना है। उसने कहा तुम्हें फ़लस्तीन में जाना, फ़लस्तीन ने जो मुसलमान आबादी, कहाँ वो मुसलमान इलाका, अब वो इतना गुंजान मुसलमान आबादी है, यह आप नक्शा देखिए 100%
पूरे जो है ना हर तरफ लोग ही,
यानी अब 4% के लिए कोई थोड़ी यहाँ पर अलग से निशान लगा जाएगा, 4% रहने वाले थे, 4% इनकी टोटल आबादी है इस इलाके के अंदर, ये सब यहाँ से भाग चुके हैं। अच्छा हमने नहीं भगाया है, इस चक्कर में भागे हैं कि हाँ यूरोप तरक्की कर रहा है वहां चले गए, उससे पहले रसूलुल्लाह के चक्कर में चले गए, यानी ये निकलते चले गए सरजमीन से, अपनी मर्जी से मारपीट वाली तो सियासत इन्होंने की है,
असलन जमीन भी इनके नहीं है, आपने पहले बताया था कनानियों की
जमीन थी, तुम तो आए हो, तुम्हें तो इलाके जंग करके फिर बसाया गया इस जगह के अंदर, और फिर जब मुसलमानों के सारे इलाके थे तुमसे कहा कि भाई अब हम नोमान से रहना है। अच्छा ये भी तारीख है, यानी वहाँ के यहूदियों ने आके कहा बाकायदा कि अब क्योंकि सारे इलाका मुसलमान हो गया, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब दीनदार हो गए, अब हमारा इनके बड़ा अच्छा रब्ता रहेगा, ये तुमने दावा उस वक्त हज़रत उमर जब पहुँचे वहाँ पर तुमने इस तरह की दावतें की उनकी, जब तो यहाँ हम सब मिलकर रहेंगे, तो ये तुम्हें 4%, 8%, 7%, 5%, कभी तुम 11% से ज़्यादा नहीं हुए सरजमीन के ऊपर। 1948 में तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, 19 तकरीबन बात कर रहा हूँ, ये 48 से पहले की बातें हैं, यानी ये तकरीबन कोई 22-23 की बातें हैं, कि जब तक ये खाली 11% रहे थे, 22-23 तक, ये उसके बाद बढ़ना शुरू हुए। वो क्या हुआ वो मैं लगा आपको बयान करता हूँ अभी कैसे हुआ। अब ये 7-8% से ज़्यादा ज़मीन पर नहीं है, उस वक्त 4% थे जब ये बैठ के बात कर रहे हैं अब्दुल हमीद दोवम से, जो आखिरी खलीफा खिलाफत उस्मानिया का, कि हमें जगह चाहिए। मैंने कहा कि मैं ताज्जुब करता हूँ कि उस वक्त खलीफा में इतनी गैरत, वहीं कि इसमें गैरत नामी कोई चीज़ इन लोगों में नहीं हुआ करती थी, ये बहुत ही अजीब लोग थे, लेकिन बहरहाल क्योंकि मरकज़ इस्लाम था, और हम चाहते हैं इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि नाम का भी हो अगर मरकज़ है इस्लाम का, तो हमें जो है ना वो उस मरकज़ को बाकी रखा, और जबकि यहूदी और सहयूनी साजिशें हो रही हों या ईसाई साजिशें हो रही हों उस मरकज़ को तोड़ने के लिए, फिर तो हमें हर हाल में इसको बरकरार रखना है ना भाई। तो बहरहाल ये आया और उसने कहा कि हमें चाहिए, जुमला मारूफ तारीखी जुमला जो लिखा हुआ है किताबों में अभी लिखा हुआ है, लेकिन आइंदा ये तारीखी किताबें रहेंगी या नहीं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये अभी लिखा हुआ है, ऐसा सब खत्म हो जाएगा हमारे सिलेबस से, हमारी तारीखी किताबों से, हमारी लाइब्रेरी से उठा के फेंक देंगे सारी किताबें, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको ये मौजूद। और वो ये था कि अब्दुल हमीद दोवम ने कहा कि मैं, तुम कह रहे हो अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट के तुम्हारे हवाले कर दूँ, यानी ये पहली मरतबा इतना गैरतमंद जुमला उसने बोला। अब इनको भी उम्मीद नहीं थी, इनकी इनको पता था याश किस्म के खलोफा हैं ये भी
पैसों से कैसे देंगे काम हो जाएगा।
हाँ ये कैसे हमारे मुकाबले में कायम करेगा। उसने कहा कि तुम कह रहे हो कि मैं अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट के तुम्हारे हवाले कर दूँ। कह जाओ नहीं होता। 1901 या 1902 उसने कहा नहीं होता यानी आप नहीं देंगे। कर नहीं धमकी दी। कहा वो मैं आपके साथ करूँगा कि आप याद यहूदियों ने कहा हम वो आपके साथ करेंगे कि आप याद रखेंगे। गुस्से में आ गया। अब्दुल हमीद दबू ने कहा तुम मुझे धमकी देते हो तुम्हारी हैसियत क्या है यहूदियों की पूरी दुनिया के अंदर ये तुम मुझे धमकी देते हो। हाँ मुसलमान
और कितने यहूदी
तुम लोग की हैसियत क्या तुम मुझे धमकी देते हो। निकलो बाहर यहाँ से दरबार से बाहर निकाल दिया। ये बाहर निकला
1906
में मर गया। थियोडोर हर्ज़ल 1906 में दुनिया से चला गया और उसके बाद सिलसिला जारी रहा मरने के बाद से लेकर। और फिर क्या होता है वो धमकी किस तरह से फिर अमली होती है और वो जहाँ पर 4-8% से ज़्यादा फ़लस्तीन में यहूदी नहीं थे ये क्या होता है कि एकदम जो है उस जगह पर यहूदियों की तादाद जो है वो बराबर बराबर हो जाती है 50-60 साल के अंदर। यहाँ पर एक बहुत अहम तारीख है जो अमूमन इस तरह बयान नहीं की जाती लेकिन मैं इसको ज़रूर करूँगा क्योंकि वो मरबूत है हमारे जो नतायज हमने लेने आगे उससे बहुत मरबूत है। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि प्लानिंग करके यहूदियों को पहले तो मुकद्दस नारे दावे करते रहे और इन्होंने तैयार कर लिया एक बड़े तबके को यहूदियों के दुनिया के अंदर वही मजहबी जो इमोशनल करके और जज्बाती और एहसासाती करके सबको कि हमने यूँ करना है। इस्तफादा किया मज़हब से लोगों के दीन से और कहा कि हमने वहाँ जाने जाना है। तो ये काम हो गया। अब वो हिजरत शुरू कैसे हो यानी अगर होगी पानी के जहाज़ों में होनी है उस ज़माने में कोई इतना तो नहीं हो सकता था कि पानी के जहाज़ों में लोगों ने सामान लेके जाना है अपना। अब यहाँ पर एक तारीख झूठ बोला जाता है वो ये है कि वो जो 4-5-7% यहूदी थे ना उन्होंने या कुछ बाद में जो आए हल्के हल्के खामोशी से छुप छुपा के अरब दुनिया से फला जगह से उन्होंने आके फ़लस्तीनियों की ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी। ये एक तारीखी झूठ बोलते हैं ये लोग। और अब जब ज़मीनें बहुत ज़्यादा ख़रीद लीं ख़रीदने के बाद कहा कि लो अब तो हमारी मिल्कियत है ये ज़मीन आपको तो जाना पड़ेगा यहाँ से। अब आप ज़रा सोचिएगा क्या कह रहे हैं। ये आप फ़लस्तीन का नक्शा देखिए यानी इतनी बड़ी ज़मीन को यहूदियों ने ख़रीदना शुरू कर दिया और फ़लस्तीनी बेवकूफ़ है कि बेचता चला जा रहा है। हाँ मुस्तज़फ है इनकी नस्बत तो इतना मालदार नहीं है जितने ये लोग हैं ना ही कोई नफूज़ है ना कोई इन्फ्लुएंस है दुनिया के अंदर लेकिन भाई यानी इतना शोर और अकल तो सभी में होती है कि मैं अगर ज़मीन अपनी बेचता चला जाऊँगा मैं कल कहाँ जाऊँगा। तो आप यूँ कहिए बेची होगी लेकिन भाई 5% ज़मीन बेच दी गई होगी 8% बेच दी गई होगी लेकिन हुआ क्या है कि वो जो चंद फीसद बेचने के डॉक्यूमेंट है ना वो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर दिखाया कि ज़मीन तो हमने ख़रीद ली है। और आज आप पढ़े लिखे लोगों के साथ कहीं पर भी बात कर रहे हो तो वो बेचारे जो है ना इसमें आगे कन्फ्यूज हो जाते हैं कन्फ्यूज़ हैं वो कहते हैं कि हाँ ये तो ज़मीनें इन्होंने खुद ही बेची हैं तो अब मिल्कियत ही इनकी नहीं रही। मैं कहूँगा भाई आप यहूदियों को नहीं समझे। देखें यहूदी पहले जिस जगह पर काम करता है वहाँ के लोगों को पहले मुस्तज़फ़ करता है। कुरान कह रहा है फिरौन ने इससे पहले कि तुम पर वो तुमने उसको मुस्तज़फ़ पहले उसने तुम्हें मुस्तज़फ़ किया इतना मुस्तज़फ़ कर दिया कि तुम में जब हुक्म आया कि झूला बनाओ मूसा की माँ और इसको झूले में डाल के पानी के हवाले कर दो तो इस कौम में जो 400 साल पहले नबी की कौम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत यूसुफ़ के भाई हैं और वो हुकूमत पर कब्ज़ा किए बैठे हैं उनकी 400 साल पर ये हालत है कि वो झूला नहीं बना पा रहे कि उनमें कोई झूला बनाने वाला नहीं था। उन्होंने कब्तियों को कहा यानी फ़िरौन के मानने वाले को कहा कि झूला बना के दो ताकि हम इसको पानी में डालें। तो ये इस्तेमार की पहली रवैश होती है कि जिस कौम पर भी आप पूरी अफ्रीका को देखिए यानी अफ्रीका मुस्तज़फ़ रखा गया है ना ये कि है अगर वो होता तो यानी वो इतनी तरक्की करता कि तुम्हारा कोई भी चैम्पियन खेल के अंदर तुम कोई भी एथलीट लेकर आते हो कहीं प्लेयर्स लेकर आते हो सारे अफ्रीकन्स हैं तुम जो है वो हत्ता तुम्हारे सदर कितनी मरतबा अफ्रीकन्स बने तुमने उनको मुस्तज़फ़ रखा है। अल्लाह ने थोड़ी उनको अलकम दी है तुमने उनको बेवकूफ़ रखा है। अफ्रीका की मिसाल एशिया की मिसाल अरब दुनिया की मिसाल तुमने एजुकेशन से दूर रखा है सऊदी अरबिया कि जो तुमने आज पूरे मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ क्योंकि उनके यहाँ पढ़ा लिखा ही कोई नहीं है डॉक्टर नहीं होता था उनके यहाँ बाहर से लेते थे। ईरान की हालत ही उन्होंने की हुई थी शाह के ज़माने में। तो तुम पहले मुस्तज़फ़ करते हो फिर जब वो गरीब हो जाता है मिस्कीन हो जाता है फिर कहते हो लाओ ज़मीनें बेचो फना करो फिर तो ये तरीका क्या है तुम्हारा। अगर तुमने ख़रीदी भी थी चंद फीसद ज़मीनें तो वो भी साजिश के तहत ख़रीदी थी एक बात ये हो गई यानी तारीखी झूठ था जिसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ कि इन्होंने ज़मीन ख़रीदी भी थी फिर ये आके दुनिया से वहाँ पर रहने लगे नहीं साजिश हुई है बाकायदा
इतनी बड़ी ज़मीन कैसे खरीद सकते
पूरी दुनिया जो है ना ज़मीनें बेच ली जा रही। एक और झूठ है जो मैं आज बयान करने वाला हूँ अभी आपसे बड़ा झूठ आलमी। खूब अब ये होता है कि जब ये तय पा गया ना कि हमने बहुत सारी फैमिलीज़ को यूरोप में राज़ी कर लिया है कि वो सब फ़लस्तीन जाएंगे जाएंगे कैसे और जब जा रहे होंगे पानी के जहाज़ों में भर के दुनिया को पता चल जाएगा اور یعنی حساس ہو جائیں گے. ابھی کوئی خلافت زمانے ٹوٹی تھوڑی تو نہیں ہے, ابھی تو مضبوط ہے. پہلی جنگ عظیم, ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار, پہلی جنگ عظیم یہودی اپنے سازشوں سے شروع کرواتے ہیں. یہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے, یہ صرف یہ کام کرتے ہیں خاموشی سے جنگ ہو رہی ہے, ایسی جیسے جنگ ہو رہی ہے, اور یہ بہت خاموشی سے پانی کے جہازوں بھر بھر کے یہودی پہنچا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خلافت عثمانیہ کو انوالو کر لیا. خلافت عثمانیہ انوالوڈ ہو گئی ہے, انوالوڈ ہے, جبھی تو سزا ملی ہے آپ کو. جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ہے 1918 میں, جنگ ختم ہوئی پہلی, 14 میں شروع ہوئی, 18 میں ختم ہو گئی. 18 کے بعد سزا ہمیں ملی ہے کہ 1923 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی. ارے ہمیں کیوں سزا دے رہے ہو؟ ہم نے جنگ شروع کرائی تھی, ہم نے جنگ لڑی ہے, ہم نے بندے مارے. نہیں, آپ نے جرمنی کا ساتھ دیا. ارے ہم نے کہاں ساتھ دیا؟ زمین ہماری تم لوگوں نے استعمال کی, آسمان ہمارا تم لوگوں نے استعمال کیا, پانی ہمارا تم لوگوں نے استعمال کیا, اور سزا بھی ہم کو دی. نہیں, سزا اس لیے ملی ہے کہ دھمکی دی تھی تھیوڈور رزل نے. اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں. آپ کی خلافت کو ختم کر دیا اس میں, اور اس سے پہلے پہلے سارا کا سارا یعنی بہت بڑے پیمانے پہ یہودی پہنچا دیا
فلسطین.
23 سے لے کے 26 تک کے اندر یہ بہت بڑی ہجرت کروائی ہے. 23 سے لے کے 26 تک, 1923 سے 26 تک بہت بڑے پیمانے پر ہجرت. نہیں, ہجرت پہلے ہو رہی ہے, یعنی 23-26 کے اندر خلافت ختم ہوئی, اور ہم نے جب ہماری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ فلسطین کے اندر تو بہت سارا یہودی آیا ہوا. اب یہاں تو 4-5% تھا
جب اس کانفلکٹ سے آزاد ہماری آنکھ کھلی,
20-22% پہنچ گیا.
ادھر دیکھا تو
20-22% پہنچ گیا تھا 23 سے لے کے 26 کے درمیان میں. ارے 22-23% کہاں سے ہجرت؟ آپ سوچیے کتنی بڑی ہوئی ہے, لاکھوں لوگوں کو منتقل کرنا کسی سرزمین کے اوپر آسان کام ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ایک کام ہوا. ابھی بھی بہت سارے لوگ نہیں آئے, اور نہیں آئے ان کا آئیں گے بھی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, عرب دنیا میں ہوں, یورپ میں ہوں, امریکہ میں ہوں, روس میں ہوں, اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ہم کیوں آئیں؟ تو کہا کہ نہیں, آنا تو پڑے گا. کیوں؟ کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, ابھی دیکھ لو کیسے آتے ہو تم لوگ. اور پھر ہٹلر خود اپنا بنایا ہوا مہرہ, اور اس کو کہا کہ جنگ شروع کرو. دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے, پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی 1939. اب ہٹلر صاحب آ گئے جرمنی کے اندر, انہوں نے شروع کی پھر پوری دنیا کو ملایا فلا ڈھمکا, اور پھر انہوں نے مشہور کر دیا کہ ہٹلر تو یہاں پر ہولوکاسٹ, یعنی اس نے تو یہاں پر ایسی جگہ بنائی ہوئی کہ وہ
مارتا ہے,
مار مار کے جو ہے لوگوں کو, یہودیوں کو پگلا دیتا ہے, ایسی گیسز چھوڑ دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے, برنرز ہیں اور فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہولوکاسٹ. اچھا جی, اب کیا ہوا؟ 6 ملین یہودی مار دیے. عجب, تمہاری تعداد ہی ٹوٹل دنیا میں 9 ملین سے زیادہ نہیں تھی.
6 ملین تمہارے مار دیے.
9 ملین میں 8.5 ملین ہے, 8 ملین میں 6 ملین یہودی مار دیے. تم جو ڈرپوک ترین قوم ہے, تمہیں پتہ چل جائے کہ جرمنی نے فرض کرتے ہیں اگر 50 یہودی کہیں مار بھی دیے, تم وہ سارے علاقے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. یورپ نہیں, یعنی جرمنی نہیں, پورا یورپ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. تمہیں پتہ چل جائے ہٹلر آ رہا ہے, تم اتنے ڈرپوک لوگ ہو, تم 6 ملین بکریوں کی طرح اس کے سامنے بیٹھے رہے کہ وہ تمہیں مار رہا ہے, پھر دوسرے ملک میں جا کے مار رہا ہے, پھر تیسرے ملک میں جا کے مار رہا ہے, پھر چوتھے ملک میں جا کے مار رہا ہے. 6 ملین ملے کہاں سے یہودی ایک ساتھ اس کو؟ یعنی بے وقوف بناتے ہیں دنیا کو. یہ دوسرا بڑا جھوٹ ہے, پہلے کہ زمینیں خریدی, دوسرا کہا کہ ہٹلر نے مارا.
ہاں نہیں, اور بات نہیں کرنے والے
آپ تحقیق تھوڑی کر سکتے اس موضوع پہ. میں مثال دے چکا ہوں, بڑے یورپینس اور ایشینس نے اس پر کوشش کی ہے کہ ہم اس پہ کچھ لکھیں, مقالے لکھے جائیں. ممنوع, ممنوع ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. شرن اخلاقا اور قانونا وہ ملک کے اندر اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں آپ کو, قانونا جرم ہے. اچھا جی, اب ہٹلر کی یہ اتنی بڑی خدمت کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یہودی جو رہ گئے تھے وہ بھی سب بھاگ بھاگ کے آ گئے فلسطین. بھاگو, ان کے لیے پھر جہاز کھڑے ہوئے تھے. کہا بھائی یا تو جل جاؤ یا ہمارے ساتھ. انہوں نے نہیں جلنا نہیں, کہا بھاگو بیٹھو چل دو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کو یہودیوں سے بھرنے کے لیے ہٹلر سے کئی, یعنی میں کہتا ہوں یہ نہیں ہوا کہ جھوٹی ہے, لیکن وہ سینکڑوں میں مروائے ہوں گے, ہزاروں مروائے ہوں گے. میڈیا ان کے پاس ہے, کیا موضوع ہے, اٹھا کے اس کو پوری دنیا کے اندر اس کی فلمیں بنا دی, اٹھا کے اس کی تصویریں چپکا دی, اٹھا کے اس کے اوپر اخبارات میں لکھوا دیا. پروپیگنڈا مشینری تو ان کے پاس ہے نا, میڈیا تو ان کے کنٹرول میں تھا سارا. تو وہ جو سینکڑوں مارے تھے اس کو انہوں نے ملینز بنا دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بندے بھی مروا دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. کوئی یعنی کوئی بڑی بات نہیں, یہودی اپنے بندے مروائے اپنے مفاد, یعنی زائنسٹ اپنے بندے مروائے. دوسری جنگ عظیم بھی انہوں نے شروع کروائی, ہٹلر کو اٹھایا, اور اس کے بعد سارے قوم یہاں پہنچا دیا. اب ہم پہنچ گئے 1948 کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں, پلٹ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ اب یہ سرزمین یہاں پر, اب پہلے 100% تھا, اب یہاں پر آپ دیکھیں 44% ہے. یعنی 44% رہ گیا فلسطین کا عرب علاقہ, اور باقی سارا علاقہ
اسرائیل
کے پاس چلا گیا,
مقبوضہ فلسطین ہو گیا.
یعنی اب اسرائیل کا نام لا رہے ہیں, ابھی اسرائیل رکھا نہیں ہے اس کا نام, ابھی اس کو جو ہے نا وہ ابھی فلسطینی ہے یہ, لیکن یہ بس ارض موعود ہے, یہ زمین جس کا پلٹنا ہے. اور یہ سارے کے سارے وہاں پر آ گئے, اور انہوں نے جو ہے وہ 38% پر انہوں نے قبضہ کر لیا, 44% پر ان کا تھا, بقیہ کہاں گے 7-8%, وہ یونائٹڈ نیشن کے پاس تھا. کیوں تھا بھائی یونائٹڈ نیشن کے پاس 45 کے وقت کیوں تھا؟ کہا کہ یہ جو ہے نا یہ مرکز ہے جس کو اب یروشلم کہتے ہیں, یعنی بیت المقدس اور یہ جو علاقہ ہے, یہ سارا کا سارا جو ہے نا ابھی کیونکہ یہ متنازع ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارا ہے, عیسائی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے, اور یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے, تو بھائی تم میں سے تینوں کسی کا بھی نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. اور خلافت ٹوٹنے کے بعد جیسے کالونیزم شروع ہوا تھا, کالونیز بن رہی تھیں, اس طرح سے فلسطین کو کالونی بنا دیا گیا تھا برطانیہ کی, اور بھی آسان ہو گیا. اب انہوں نے جو ہے نا دو بڑے معاہدے کیے آپس میں, سائکس پیکو کے نام سے ایک بڑا معاہدہ, دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو, جو فرانس نے اور برطانیہ نے آپس میں کیا تھا سائکس پیکو, اور دوسرا پھر وہ ڈکلیریشن ہے بلفور کے نام سے. اس میں پھر آہستہ آہستہ تقریباً طے ہو گیا ہے کہ یار ہم یہ فلسطین جب جانے لگیں گے نا, جب چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے, جیسے برصغیر سے بھاگ رہے تھے, جیسے پوری دنیا سے بھاگ رہے تھے برطانیہ, تو کیا جب ہم جا رہے ہوں گے تو ہم یہ تمہارے حوالے کر کے چلے جائیں گے. اور وہ اس وقت اپنا یہ جو مسلمانوں کا علاقہ تھا جس پر بدماشی سے انہوں نے اپنی تعداد کو 38% کیا تھا, وہ اس کو پورا علاقہ یعنی زمین کو 38% کیا تھا, تقسیم کر لیا تھا, اس کو پورا علاقہ دے کے ان کو اور چلے گئے. اور یہ وہ تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا.